اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کل کے اور آج کے ایمان میں کوئی فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھی ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم بہتری کی طرف جانے کی بجائے بدتری کی طرف جائیں, کیونکہ کوئی چیز اپنی اصل پہ قائم نہیں رہتی جبکہ وہ ہر دن ڈکلائنز کا شکار ہو. کوئی بلڈنگ, کوئی گھر, کوئی کپڑا, کوئی اور چیز, تو انسان تو بہت ہی قیمتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو ساتھی اپنے گھر سے سن رہے ہیں وہ سب واقعی ایسے ماحول میں سن رہے ہیں کہ جس کو کہیں کہ ون ٹائم اپرچونیٹی. آپ کہتے ہیں کہ اس کورس کی خوبی ہی یہ ہے, نو ریکارڈنگ, نتھنگ, نو سیکنڈ چانس. بھول جائیے کہ کوئی کبھی ریکارڈ بھی ہوتا تھا. یہ وہ دور کا کورس لے کر چلیے کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں, نہیں سن سکے تو نہیں سن سکے. کیا زندگی میں ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ یہ جو آج ہمیں یہ کانسیپٹ دے دیے نا, واٹ ایور یو وانٹ, جو آپ چاہو, اس نے بھی ہمیں نفاق کے درجوں پہ ڈال دیے. پھر کیا, پھر سن لیں گے, پھر کر لیں گے. تو اس خاص طور پہ کورس کو اپنی ٹریننگ کے لیے ابھی ہی پڑھنا ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. چینج کیجیے, اپنے ورک کو سیٹ کیجیے, اور اگر ساری کوششیں آپ کی اپنے طور پہ ہو چکی اور پھر بھی حالات آپ کے بس میں نہیں, تو پھر عزیت باللہ ربن, تاکہ آپ وہ مزہ بھی تو لینا کہ جس مزے کے بعد حقیقت میں پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان کی قدر تو کروں, کیونکہ ہم بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں. ہم سن بھی نہیں رہے تھے پورا, کوئی بات نہیں, ریکارڈ جو ہو رہا, نوٹس نہیں لے رہے, تصویریں لے رہے ہیں. پہلے لوگ نوٹس لیتے تھے, پکچرس لیتے ہیں. آپ بتائیے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اور علم اور صبر ساتھ ساتھ, ان نقل تستتی مائی صبرا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے کسی استاد کو ہمارے لیے یہ کہنا پڑے کہ آپ جائیے, میں آپ کے ساتھ صبر نہیں اور کر سکتا. کیونکہ علم کے اندر ایک چیز عاجزی ہے. طالب علم کے اندر جب تک طلب نہ ہو, تڑپ نہ ہو, عاجزی نہ ہو, وہ نہیں سیکھ سکتا. اس کے لیے کہہ لیجئے کہ صبر ہی تو سب سے مشکل چیز ہے. اور ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ علم اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ اور میں صبر کے ساتھ ہی بیٹھیں گے تو ہی سیکھیں گے. تو آئیے, بہت ہی خوبصورت سبق میرے آپ کے لیے اللہ کی رحمت سے منتظر ہے. اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے جسمانی, ذہنی, قلبی, روحانی طور پر ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بنیان مرصوص. الحمدللہ, آج ہم اس کے تیسرے دن پر ہیں. تیسری سیڑھی ہے. سورت صف کی ان ڈیپتھ تفسیر ہے ہمارے سامنے. اور سورت صف کیا ہے؟ ہمیں آرگنائز بنانے والی اور ہمیں اپنے اپنے ایمانوں کی فکر لگانے والی صورت ہے کہ واقعی ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں, اس کے بعد ہم بنیان مرصوص بن رہے ہیں اور اللہ ہمیں بنا دے. ہم اس پوری صورت میں اپنے لیے جو ایک گول سیٹ کر چکے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہم نے اللہ کے فیورٹیز بننا ہے, اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں خود کو شمار کروانا ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر, گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. ہم پیچھے بات کر چکے, مزید پھر ایک دفعہ سمجھ لیجئے کہ سورت نازل کب ہوئی, زمانہ نزول, سورت کا شان نزول بھی آئے گا بیچ میں انشاءاللہ آج. تو سورت صف جنگ احد کی شکست کے بعد, جو کہ سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی تھی, اس کے بعد نازل ہوئی تھی. کیونکہ جنگ احد میں بد نظمی ہوئی تھی, بے ترتیبی ہو گئی تھی, آغاز بہت اچھا تھا, اینڈ تک کوالٹی قائم نہیں رکھ سکے. ایک ایک لفظ کو اپنے کسی بھی دین کے کام پہ لیجئے, وہ کورس کا آغاز تھا, وہ کسی فنکشن, کسی پروگرام کا آغاز تھا, وہ کوئی میٹنگ تھی. عموماً لوگ شروع میں بہت کیئر کرتے ہیں اور کافی زیادہ एहतियात करते हैं लेकिन बाद में फिर बिखर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो एंड में बिल्कुल किसी भी नतीजे पे पहुंचे बगैर ख़त्म हो जाती हैं। इसको ख़त्म कीजिए अपने अंदर से। आपकी वो मीटिंग जो शुरू से लेकर एंड तक एक ही पूरे जोश, जज्बे और एंथुसिज्म के साथ ना हो, उसका फ़ायदा नहीं होगा। और एंड पे कोई पहले जा रहा है, कोई उठ के जा रहा है, किसी को बीच में जाना था, कोई आ रहा है, ये मीटिंग्स नहीं होती, मत करें, पूरा फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह हम इस वक्त भी दीन सीख रहे हैं। आप ए टू जी इधर हैं, दिल दिमाग जिस्मानी रूहानी कल्बी से, तो फिर ही आप लेंगे। और बीच में अगर एफ डी चला गया, किसी का जे के चला गया, और किसी का कहले जेड ही चला गया, और कोई अभी आया नहीं तो उसका ए चला गया, तो उसके लिए कोई वादा नहीं है। जब तक पूरे फोकस्ड होकर पूरी चीज़ नहीं लेंगे, आप पूरे नतायज कभी नहीं लेंगे। और आज हमारा एक बहुत बड़ा मसला दीन के नाम पे भी है कि वी आर ओवर कमिट। मैं यहाँ हूँ तो मैं इधर ही हूँ, अल्लाह के नबी मक्का में थे तो मक्का में थे, मदीना में तो नहीं थे। हिजरत का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता अगर अल्लाह के नबी कहते कोई नहीं, मैं मक्का में हूँ, मैं मदीना में भी हूँ। कभी कभी हम दीन के नाम पर, क्योंकि हम दीन वाले हैं ना, हम कुरान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम अपने आप को ओवर कमिट करते हैं और फिर नतीजा कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। एक होता है मुस्तकिल बिजी रहना, वो और चीज़ है, एक है प्रोडक्टिव रहना, वो और चीज़ है। लेकिन अब एक ही वक्त में और आप एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ में आते हैं तो उससे फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। मैं जायज़ ना जायज़ की बात नहीं करी, प्रोडक्टिविटी कम ज़रूर होगी। इंसान का जहन पहले से ही सोचने लग जाता है, मैंने इधर आना होता है, मैं सुबह 4-5 के करीब के वक्त से मेरा दिमाग इसमें होता है, और यहाँ आने तक मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। इतना गम, इतना फिक्र होता है, एक एक चीज़ को देखने के लिए दिल करता है। तो क्या पता चला कि जहन साजी के बगैर बात नहीं बनती। और इसी तरह खाते ही उठ जाओ तो आप कहते हैं खाना हजम कैसे होगा, कोई पान कोई छा लिया। तो इंसान वुजू से सीखे, वुजू जहन साजी है, इकामा जो है वो आपको और रूहानी तौर पे उस जगह पे ले जाती है, फिर आप कहेंगे अल्लाह अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा, तो फिर नमाज से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो अल्लाह ताला सूरत सफ में हमें हमारी दीनी कमजोरियों का फ़र्क बता रहा है। वो जंग लड़ने गए थे, कोई फिल्म देखने नहीं गए हुए थे नौसुबिल्ला, सहाबा के लिए तो ऐसा लफ्ज़ बोलना सोचना या कहना भी हमारी औकात नहीं है। हम अपने ऊपर लेकर सोचें कि मैदान जंग में गए, जख्म आ गए, फिर आप देखिए कि कितने लोग शहीद हो गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, और अल्लाह सुबहाना ताला अब उनको मजीद ट्रेनिंग देने के लिए सूरह सफ नाजिल कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? कोई बात नहीं, गलतियों पे लोगों को छोड़ना नहीं है बल्कि उनकी इस्लाह करनी है। और जब तमाम मुसलमान और मुनाफिकीन को जंग में साबित कदमी, अमीर की इताअत, इत्तेहाद, तंजीम, इत्तफाक और मुनज्जम सफ बंदी के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की माने मैदान जिहाद में अपने जौहर दिखाने की तालीमात और तरबियत की अशद ज़रूरत थी, उस वक्त सूरत सफ नाजिल हुई थी। तो क्या पता चला कि इसका ज़माने नज़ूल वो था जिसके लिए आप और मैं अपनी कहावत में कह सकते हैं, जब लोहा नरम था तो जर्द लगाई गई। तब तरबियत, तबलीग और हर मामले में ये कसूल समझ लीजिए कि इसमें ऐसा ही होता है। सूरत सफ का खुलासा करवाती हूँ आज आपको पहले, क्योंकि शुरू का कुछ हिस्सा इसीलिए मुख्तस किया हुआ है। तो शॉर्ट समरी ऑफ दिस सूरा, ये कैसे होगी, ये क्या होगी। कोई भी चीज़ पढ़नी हो या पढ़ानी हो तो उसको पहले पूरा समझना पड़ता है। तो सूरत सफ जो कि इस वक्त हमारे सामने है, मदनी सूरत है, 14 आयतें हैं, 61 नंबर की सूरह है, और इस सूरत में 6 डिफरेंट टॉपिक है, यानी यू कैन से देर आर 6 पैराग्राफ्स ऑफ दिस सूरा। 14 आयतों में 6 टॉपिक्स इज टू बिग सूरा, ये मतलब है। नंबर एक, पहला पैराग्राफ, पहली आयत जो हम अल्हम्दुलिल्लाह टच करके किसी तरह पूरी कर चुके हैं, उसका टॉपिक क्या था? बेऐब अजीज और हकीम हस्ती इस्लाम को गालिब करेगी। हमने देखना है कि आयत के एंड पे क्या आता है, अजीजुन हकीम। अल्लाह ताला गालिब भी हैं और हिकमत वाले भी हैं, तो जब अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं तो फिर वो अपने नाम को गालिब कर लेंगे। ये क्यों कहा? इसलिए लिखिए, इस पूरी सूरत का मेन थीम, मरकजी मजमून, कूनू अंसारुल्लाह, हो जाओ اللہ کے مددگار اور غلبہ اسلام، دین اسلام کو غالب کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو گہرا نہیں کرتے، تب تک آپ اس کلمہ حق کی بلندی میں ایک قدم نہیں چل سکتے. جتنے قدم بھی چلتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے. تو مین ٹاپک، مرکزی مضمون اس سورت کا کیا ہے؟ اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان سے جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے. یہ آج کے مسلمان کو بھی کہا جا رہا ہے اور یہ ماضی کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا تھا. تو پہلا پیراگراف، پہلی آیت میں ایک ٹاپک پورا کیا ہوتا ہے کہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے نعوذ باللہ تم پر چھوڑ دے گا اس کام کو، کہ چونکہ تم مسلمان ہو، چونکہ تم نبی کے امتی ہو تو پھر تم جو ہو وہی کرو گے تو ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میری آس پہ نہ رہنا، اچھا چلو میں ہی کروں گا یہ کام تو تم کرو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ خود کر لے گا. اور یہ سچ ہے. سورت مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اس دین سے پھرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، شوق سے جائے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں اللہ نے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا ہے تم کر لو تو بہت اچھا ہے، نہیں کرتے تم تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا. تو لہٰذا پہلی بات ہے کہ اللہ کین ڈو دس. اس میں بھی عمل کی بات لکھی ہے. آپ کسی جگہ کے بڑے ہیں، ماں بڑی ہوتی ہے گھر میں، ساس بڑی ہوتی ہے، اسی طرح کسی اسکول میں پرنسپل بڑے ہوتے ہیں، کسی کمپنی میں، کسی اسٹور میں مینیجر بڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ خود کوئی کام کر سکتا ہے، بلکہ ہر کام کر سکتا ہے، تبھی تو اس کو مینیجر بناتے ہیں نا، لیکن اس کو ہر کام خود نہیں کرنا چاہیے. لکھیے جملہ، اللہ اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ خود نہیں کر رہا. اللہ ایک کن کہہ دے، پوری دنیا میں سبز جھنڈے لگ جائیں، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی تسبیحات ہو، اور سبح للہ ما فی السماوات کی جو بات ہم پیچھے پڑھ کے، پوری کائنات سے سبح کی آوازیں آنے لگ جائیں، ممکن ہے نا؟ لیکن اللہ نے یہ کام انسانوں سے لیا. یہ وہ کام ہے جو فرشتوں کو کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو وہاں اللہ نے کیا کہا تھا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یہ کام کر سکتا ہے. دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے. جب آپ کوئی کام خود کر سکتے ہیں نا، تو آپ کی ٹون اور ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں ہے کوئی تو میں تو ہوں نا، اٹس فائن، آئی کین ڈو اٹ. لیکن جو کام آپ خود نہیں کر سکتے نا، پھر اس میں عاجز ہوتے ہیں، آپ مجبور ہوتے ہیں. آپ کو کمپیوٹر آن نہیں کرنا آتا، آپ اپنے بچے کے آگے مجبور ہیں، یہ کھولے گا آ کر پاسورڈ لگائے گا تو پھر ہی میں کروں گی. بالکل اسی طرح یاد رکھیے، انسان دن میں کئی بار مجبور کیا جاتا ہے. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ہسبینڈ لیٹ ہو گئے. ہم انسانوں کی جس دنیا میں جی اور بس رہے ہیں نا، ہم مجبور ہیں، مجبوریوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں. اب اس فیلنگ کو اپنے اندر اتاریے، سارا غصہ، ساری اکڑ، سارا وہ جو اندر خنس بھر جاتا ہے نا، کبھی کبھی دین کے کچھ چار لفظ بول کر، چار سن کر، چار پڑھ کے، چار پڑھا کے، پھر لوگ، اب میں تو اتنا کچھ کرتی ہوں تو بلا بلا میری نہیں سنے گا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی تسبیحیں کی، میرا بچہ پھر بھی فوت ہو گیا، یہ میں نے کسی کے منہ سے سنا، میں نے اتنے صدقے دیے، میں نے پاکستان فون کیا، پھر بھی ہمارا مریض نہیں بچا، وہ فوت ہو گیا. تو یہ دھونس اور دھاندلی نہیں ہے. تم سارا کچھ اپنے سر سے پاؤں تک لٹا دو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے اندر ذرا سی بڑائی آنے لگتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہو گئے. کہیں جا کے چار لفظ بول دیں یا ہم تھوڑا سا دین کا کام کر دیں تو ہم کہتے ہیں ہماری ہر بات مانو، کتنی میری ضرورت ہے ان کو، پھر بھی دیکھو میری نہیں سنتے، میری نہیں مانتے. تو بہرحال یہ بات تو آگے چلتی جائے گی. پہلی بات جو آپ نے، میں نے اس سورت کو پڑھ کے سمجھ لی ہے، کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور وہ کیا کہ اللہ اپنے کام کرنے پہ غالب بھی ہے الحکیم بھی ہے. کرتا کیوں نہیں؟ اگر اللہ ہی خود کر لے تو پھر بندے کیسے آگے آئیں گے؟ پھر موقع اس نے تو ہمیں آپ کو موقع دیا ہے, ورنہ تو وہ کر سکتا تھا. دوسرا ٹاپک آیت نمبر 2 سے 4 تک ہے. اس کا ٹاپک لکھئے محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے. یہ آج ہم پڑھیں گے, یہ ہمارا آج کا گول ہے انشاءاللہ. 2 سے 3 آیتیں لگیں, یہ 2 سے 4 تک میں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے, آپ کا دعویٰ ہے, آپ یہ شور مچاتے ہیں لا الہ الا اللہ, آپ نے 1,25,000 دفعہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں پھر تم اللہ کے رستے میں جد و جہد کتنی کرتے ہو, تم محنت کتنی کرتے ہو. تیسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے آیت نمبر 5 پہ اور ختم ہوتا ہے آیت نمبر 6 پہ. اس کا ٹاپک کیا ہے کہ ماضی کے مسلمانوں کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی نہ کرو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی کے مسلمان بنی اسرائیل تھے, یہود مدینہ کی طرف اشارہ ہے. یہاں ایک قسم کا ہمیں مثال دے کر سمجھا دیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جب صحیح کام نہ کیا تو اللہ نے ان کو معزول کر دیا, تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. فورتھ ٹاپک شروع ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے اور کمپلیٹ ہوتا ہے 9 پہ. یہ ہے اصل میں وہ جس کے ارد گرد پوری صورت گھومتی ہے, اور وہ کیا ہے, غلبہ اسلام کی بشارت. خوشخبریاں ہیں اس میں کہ مسلمان جیسے بھی ہو گئے, گئے گزرے ہو گئے, اسلام آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے, سرز بلند ہے. اسلام کبھی مردہ نہیں, کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ, اسلام کبھی نہیں مرتا, یاد رکھیے. اسلام ہمیشہ تھا, ہے, رہے گا, جیسے اللہ کی ذات ہے, جیسے اللہ کا کلام ہے, جیسے اللہ کی بات ہے. سویا ہوا ہے آج یا مسلمان سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ایک آئیڈیل سچویشن بتا دوں آج آپ کو. لکھیے لفظ اسلام اور آگے ورسز کر کے لکھیے مسلمان. اگر یہ دونوں بالکل ایک میچنگ ہوں, جیسے آپ کلر میچ کرتے ہیں نا کہ بلیک کے بھی شیڈ ہے, آپ کہتے ہیں یہ بلیک صحیح ہے, یہ جیٹ بلیک ہے, یہ بھیکا تھا, یعنی وہ دے دیں, ہاں یہ بلیک ٹو بلیک ہے. کبھی وائٹ کا میچ کرنا ہو سب سے مشکل ہوتا ہے, وائٹ ہے, یہ کہہ لیجئے کہ آف وائٹ ہے اور یہ فلاں ہے. جب اسلام اور مسلمان بلیک ٹو بلیک, وائٹ ٹو وائٹ ہوں, دیٹ از آئیڈیل سچویشن اینڈ دیٹ واز. یہ ہے وہ جس کو اللہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ صحابہ کرام, صرف فتح کی آخری آیت. دور صحابیت میں اسلام از اکول ٹو مسلمان, دیر واز نو ڈفرنس. یہ گرے کے شیڈ نہیں تھے کہ جیٹ گرے اور پھر کہہ لیجئے کہ چارکول گرے اور پھر سلور گرے اور پھر کہیں جا کے, ایک تھا. یہ ہے آئیڈیل دور. آگے چلیے, بیچ کے سارے شیڈ چلتے ہی جاتے ہیں, چلتے ہی جاتے ہیں. آپ اس کو اپنی ذات کے ساتھ انڈیویجولی بھی لکھ سکتے ہیں. اسلام از اکول ٹو می, ایف آئی ایم سیم ایز لائک اسلام, تو میرے اوپر وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زوجہ نے کہی اور صحابہ بھی کہتے تھے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. کان خلقہ القرآن, قد افلح المؤمنون سے لے کے اولئک ہم الوارثون. کسی نے اگر نبی کا اسوہ, نبی کا اخلاق دیکھنا تو کہا جاؤ سورۃ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو. اس دور میں لوگ قرآن کو نہیں دیکھتے تھے. دیکھیں نا صحابہ کرام کا دور, اور میں اس کو آگے بڑھا کر لے کے آتی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور پہ. 10 سال حکومت ہوئی, 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا. قرآن پڑھ کے ہوئے تھے؟ یہ دعویٰ بکلٹس لے کر ہوئے تھے؟ نو, قرآن تو پورا پائلڈ اپ, جس کو اپنی اس فارم میں جس میں آج آپ میں دیکھ دیں, اگر اس کی یہ فارم اگر آپ اس کی لاسٹ سٹیج پہ جائیں تو حضرت عثمان کے دور میں تھی. لکھا تو نبی کے دور میں بھی گیا تھا, ہڈیوں پہ تو تب بھی تھا, چمڑوں پہ تب بھی تھا. رائٹنگ تو اللہ کے نبی کے دور سے ہوئی, لیکن اس کی تالیف آگے پیچھے, یہ سورت وہ سورت, جس کو پورا قرآن کہتے ہیں, یہ تو بعد میں ہوا. تو یہ جو خیر القرون تھا یا جو دور اول کے لوگ تھے, یہ کس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ یہ کون سا قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے؟ جی بولیے, इसको ऐसे समझिए कि एक कुरान वो है जो आपके मेरे घर में लिखा हुआ है और एक कुरान है जो आपके हाफिज बच्चे के सीने में। हाफिज को सीने से कुरान निकालने में कितने सेकंड लगते हैं? कोई आयत पूछे वो बता देगा, और आप कुरान से शायद अभी सफ़े से ढंढो रहे हो। जब ये रंग बदल गया तो उसका लास्ट सिनेरियो लिखिए आज इंशाल्लाह 2 पे, इस पर आपको मज़ीद बात समझ आएगी कि जब तारीख तरीन दौर आता है ना दुनिया में, तो इस्लाम ब्लैक, मुसलमान वाइट, गोरा चिट्टा, और इस्लाम किसी चीज़ में वाइट शो करता है अपने आप को, मुसलमान काला हो चुका था, समझ रहे हैं ना, इस्लाम और मुसलमान। जब दोनों का एक रंग एक ढंग, हर चीज़ पसंद एक नापसंद एक, जीना एक मरना एक, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और जब बिल्कुल ही अपोजिट बन जाए, जिसको आप कहते हैं कि नीले के साथ पीला लगा ले रंग, तो दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। और आज का जो हमारा मौजू होगा, कल आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली कैटेगरी बता दी थी इस्लाम के न्यूक्लियस की, आज उसकी वर्स्ट भी पढ़ेंगे हम। क्यों पढ़ेंगे? ताकि हमें तो पता चले मेरा शेड क्या है। देखिए स्किन टोन नहीं चेक करते आप, अच्छा ये फाउंडेशन ठीक है, अच्छा ये सही लगेगी, अच्छा ऐसा तो नहीं, और बालों में रंग लगाएं, कितनी तो मैचिंग है हम खवातीन करती हैं। तो क्या मैंने आपने अपनी स्किन टोन नहीं मैच करनी कुरान से और इस्लाम से? तो अल्लाह ने गलबा इस्लाम की बिशारत दी आयत 7 से 9 के बीच में। आगे चलते हैं तो फिफ्थ टॉपिक इस सूरा का आयत 10 से 13 पे मुहित है। दुनियावी और उखरवी फताह के लिए चार शर्तें, वो क्या हैं वो वहाँ पढ़ेंगे, आप इंजॉय करेंगे इस आयत को इंशाल्लाह। और छठा और आखिरी टॉपिक दावते नुसरते जिहाद। चाहते हो अल्लाह की मदद आए तो आओ फिर अल्लाह के इस दीन के मुआविनीन बन जाओ। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इस पूरी सूरत को एक नट शेल में बंद कर दिया। अब ये सिर्फ आपको इसलिए दिया मैंने कि आपको अंदाज़ा तो होने लगे कि हम अभी क्या पढ़ चुके और क्या नहीं पढ़ चुके। और जब आप इसको देखते हैं और पढ़ते हैं और पिछली सूरत से या पिछली चीज़ों से भी आप इसका रब्त लेते हैं, तो इससे पीछे सूरत पारे के शुरू में है मुजादिला, पहली सूरत, उससे अगली सूरत है सूरत हशर, और उससे अगली सूरत अल मुमतहिना। इन तीन सूरतों में मुनाफिकीन की सरगर्मियों का तस्करा था, एक्टिविटीज जिक्र था। यहां सूरत सफ में उनको गुफ्तार के गाजी बनने की बजाय किरदार के गाजी बनने की दावत दी जा रही है कि लिमा तकुलून मा ला तफलून, और अल्लाह के सच्चे और मुखलिस मददगार यानी कूनू अंसारुल्लाह बनने की दावत दी जा रही है। और साथ ही साथ ऐसे मुनाफिकों को गलबा इस्लाम और इजहारे दीन की बशारत दी जा रही है कि देखो तुम मान जाओ तो मान जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन बात का खुलासा क्या है? ये एक बड़ी अहम सूरत है जो अल्लाह ने हमारे नसीब में रखी। अल्लाह हमें इसको पूरा समझने की तौफीक अता फरमाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 1 हम कर चुके, ज़रा सा दोहरा लीजिए। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़रा से इस पे गौर करें। तस्बीह बयान की है अल्लाह की हर उस चीज़ ने जो आसमानों में है और ज़मीनों में है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। थोड़ा सा गौर किया जाके बाद में इस पे आपने। पांच किस्म की तस्बीहात, पांच किस्म के रवैये, और यकीन करें कि किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तारीफ करता है जो आसमानों और ज़मीन में है। अल्लाह की तारीफ के साथ अपने हाल से बताता है जो कोई आसमानों ज़मीन में है। फिर तीसरी बात है, अपने फेल से बताता है हर एक जो कि आसमानों ज़मीन में है, क्या कि वो अल्लाह की दीवी तकदीर पे राजी है। आप अपने अंदर ये पांच तस्बीहात ले आए, कोई आपको बीट नहीं कर सकेगा, कोई आपको दुखी नहीं कर सकेगा, कोई आपको गमगीन नहीं कर सकेगा, कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा। ये जो ह्यूमन एरर्स है ना, आप कहते हैं फिर कभी हम उदास होते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम सैड होते हैं। मैं आपको कायनात से अब से सबक लेना सिखाने लगी हूँ। आप देखिए कि रोज सूरज चढ़ता है फिर डूबता है, उसके अंदर कह लीजिए कि एक इब्तदा है तो एक इंतहा है। कभी सूरज को डूबने के करीब जब आप देखें तो कायनात रोने लग जाए, हाय सूरज मर गया, हाय सूरज मर गया। और जब 12 o'clock सूरज पूरी जोश पे होता है तो हर तरफ से वाह वाह की, जी जी देखो सूरज जवान हो गया। और जूं ही फिर वो जवाल का वक्त टले और सूरज ढलने लगे तो कायनात दिखे भाई ये कमज़ोर हो रहा है। आपको कोई ऐसी एक साउंड भी दिखती है तो आप मैं क्यों अपनी छोटी छोटी जिंदगी की परेशानियों पे परेशान है। वक्त से पहले बूढ़े हो गए हम लोग, हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। लोग क्यों वक्त से पहले बूढ़े होते हैं कभी आपने सोचा? ये राह जाते तफक्कुरात, वो चीज़ें जो भी इट विल नेवर हैपन, आप उसके गम लगा के बैठे हुए हैं, फलां को ये ना हो जाए, मेरा बच्चा ना बिगड़ जाए, मेरी माँ ना फौत हो जाए, मेरे भाई को कुछ ना हो, मेरे शौहर दूसरी शादी ना करे। भाई सूरज चांद सितारों को देखा करो कैसे झूलते हैं, बारिश में भी खुश, धूप में भी खुश, दरख्त के पत्ते खुली, चले सूरज की मिसाल को घर जाके आप सोचिएगा मजीद। मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रही हूँ कि आप इस तस्बीह को कैसे अपनी जिंदगी में लाएं। दरख्त देखिए, एक दरख्त का अगर आप एक साल का पूरा रोटेशन लें, 4 सीजन एक दरख्त पे आते हैं, गर्मियों में समर खिले हुए जैसे आजकल सब दरख्त हैं, आगे थोड़ा जाएंगे अक्टूबर नवंबर में ऑटम कई रंग के पत्ते, और नवंबर से जनवरी के बीच में दरख्त खाली सूखी टहनियाँ, और उसके बाद अगर मैं नॉर्वे को ले लूँ जहन में तो दिसंबर से तकरीबन मार्च अप्रैल तक सफ़ेद बर्फ। कभी आपने किसी दरख्त के पत्तों को गिरता देखा और दरख्त रोए? आप हर पत्ते को ऐसे सोचिए ना कि बड़ी मुश्किल से सींचे हैं ये मैंने, जैसे आप अपने बच्चों को सींचते हैं। हर पत्ते का गिरना क्या दरख्त के एक बच्चे का मरना नहीं है? और जब सारे ही पत्ते उतर जाते हैं, यकीन करें ऐसी डंडियां होती हैं वहां हमारे पास, इधर भी ऐसे ही होता है, कुछ सदाबहार दरख्तों पे रहते हैं पत्ते, लेकिन मोस्टली जो आम दिखने वाले दरख्त हैं उन पे एक पत्ता नहीं होता, एक पत्ता नहीं होता। कि हम अपने घर के दरवाजे से, हमारी खिड़की के सामने एक प्लम ट्री है, मैं उसको पूरा साल देखती हूँ जब भी कभी, आजकल देखें तो उसमें गिन नहीं सकता इतने पत्ते। और जब खिजां आएगी रंग बदलेंगे, फिर गिरेंगे पत्ते, ज़मीन पे भरे पड़े हैं फिर भी, और एक दिन आता है एक, ओनली वन लीफ इज नॉट देयर। ऐसे लगता है कभी कि एक माँ जिसके सारे बच्चे मर गए, तो कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं कभी रोने की आवाज़ आई दरख्त से। ये है सब्बह लिल्लाह, बी प्लीज विद अल्लाह, बी प्लीज विद लेयर ऑफ अल्लाह। कुछ मिल गया तो आपकी मान गई, लेकिन आपने दुआ की। मैं मिसाल दे देती हूँ, कोई बीमार है घरों में, अब कौन चाहेगा कि हमारा बीमार फौत हो? हम तो बूढ़ों को ना जाने दें, कहाँ फिर जवान बच्चों को कोई जाता देखे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये होगा। अब आप सोचिए कि जब आपने दुआ की, और हम कहते हैं कि ये दुआ ज़रूर कबूल होनी चाहिए क्योंकि मैं कुरान पढ़ती हूँ, ये दुआ ज़रूर कबूल होनी चाहिए, मैंने सुबह सदका दिया था। हम बस दफा थोड़े से पैसे दे के ना, जैसे रिश्वत नहीं कोई दे देता तो कहते हैं अब काम क्यों नहीं किया जी, पैसे तो आपने हमसे ले लिए। 900 लाख कुछ का अंदाज अल्लाह के साथ है, रूठे हुए पीरों से, बुजुर्गों से, बुतों से खुश, वहां जाके कहीं बाबा जी जो मिलना आपके दर से मिलना, आ गया भर दे झोली मेरी, आप मेरे दस्तगीर, आप मेरे मुश्किल, वहां बड़े प्यार बड़े राग हैं। और जब अल्लाह से बात करते हैं तो जैसे नाराज बच्चा माँ को नहीं घूरता रहता, सबसे अच्छा होगा आपका बच्चा, ये आंटी है, ये आपकी मामा की दोस्त है, ये चची है, सब कहते हैं आपका बच्चा बहुत डिसेंट है। तो जब वो बच्चा माँ के सामने आता है कहता है आपसे जैसी कोई औरत ही नहीं है दुनिया में, होता कि नहीं होता? बात शोहरों की मिजाज है, घर में आते एकदम चुप चिचड़े, और बाहर बड़े, वो कहते हैं आपके हस्बैंड तो बड़े बाखलाक हैं, वो कहते हैं कभी इनको घर में आके तो देखिए लग पता जाएगा। और खवातीन भी ऐसी होती हैं, हम भी ऐसी हैं, घर में तो हमारा भी ये यूं त्यूरी चढ़ी रहती, कभी हंसे हैं घर में आप? और अक्सर लोगों को मैं कहती हूँ हंसने से रोज़ा नहीं टूटता, अल्लाह के वास्ते हंस लो, हंसने से कोई आपके तकवे के अंदर कोई छेद नहीं आता, अल्लाह के बंदो हंसा करो, स्माइल दिया करो, हल्का सा जोक किया करो। पता नहीं हम कहते वो जैसे जरा सी फाउंडेशन लगाए तो फिर ज्यादा बात ही नहीं करते कि वो रिंकल्स ही ना पड़ जाए, आर्टिफिशियल तकवा है हमारी जिंदगियों में। हम जब शादियों में जाते हैं स्टैचू बन के खड़े होते हैं, हिलना भी नहीं, क्योंकि हिलेंगे तो पता नहीं कई चीजें अंदर से गड़बड़ हो जाएंगी, और जब हम दूसरी जिंदगी में आते हैं तो बिल्कुल ही दूसरे एच पे होते हैं। बी रिलैक्स्ड, बी नेचुरल, ये रूम टेम्परेचर पे रहे, देखते हैं बहुत सर्दी होती है तो ठंड लगती है, गर्मी होगी तो रूम टेम्परेचर पे कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहु तआला की ये कायनात आपको मुझे ये जो सब्बाह का एंगल सिखाती है ना, जो मेरा रब चाहे वही ठीक है, ये है वो जिसको सब्र का आला तरीन दर्जा कहते हैं, तस्लीम और रजा। आई एम प्लीज विद द प्लेयर ऑफ माई अल्लाह। आपने दुआ की, मान ली अल्लाह ने, हो गया वो काम, खुश हो जाएं, आपकी मानी गई। और अगर आपने दुआ की तो नहीं हुआ तो कह दिए कोई बात नहीं अल्लाह जी, आपकी मानी गई। नहीं समझ आती? ये तस्लीम और रजा आपको कायना सिखाती है। मैं इस पर भी बड़ा गौर करवा सकती हूँ, लेकिन अब लेके चलती हूँ अगली आयत पे, फिर एंड पे साथ साथ चलता रहेगा। आज हमारा गोल आयत नंबर 2 और 3 है, देखते हैं। लिखिए आयत नंबर 2, टॉपिक है इसका बुनियादी अखलाकी कमज़ोरी, कौल और फेल का तजाद है। यानी दुनिया में दुनिया वालों को भी एक दूसरे में, शौहर को बीवी का, बीवी को शौहर का, माँ को बच्चों का, बच्चों को माँ का, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय, और मेहमान को मेज़बान और मेज़बान को मेहमान, यानी हर छोटे बड़े रिश्ते में जो चीज़ कोई पसंद नहीं करता वो क्या है कि कहो कुछ और करो कुछ, दिखाओ कोई सैंपल और जब चीज़ घर में आए तो वो कोई और हो। शुरू में कोई चीज़ बना दो तो बड़ी प्यारी और बाद में क्वालिटी डाउन कर दो। कोई भी चीज़ दुनिया में इस असूल पे जब आप उसको फिल करेंगे तो वो चीज़ पसंदीदा नहीं है। और हैरत हो रही है कि इस मजमून से सूरत शुरू हो रही है। जैसे कि मैंने आपको तذکرہ कर दिया कि सूरत सफ एक तरबियती सूरत है, इट्स अ ट्रेनिंग कोर्स। और अब आपने पूरी सूरत में क्या सोचना है? ओहद से चोट खाए हुए वो लोग जो बच गए थे, ज़रा कुछ तो शहीद हो गए, अब जो पीछे आए थे उनके ऊपर बड़ा बोझ था, गिल्ट था, हमारी गलती से ये हुआ। ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ जो 50 लोगों में से 40 जगह छोड़ गए, तो उनको गिल्ट था, हमारी वजह से हमजा चले गए, हमारी वजह से मुसअब बिन उबैर चले गए, ओहो मेरी गलती थी, तो देखना नबी सल्लम का दान टूट गया और आपके हौद की कड़ियाँ आपके माथे में पड़ गई। याद रखिए शैतान एक इतने छुपे हुए तरीके से हमला करता है, वो क्या, गिल्ट में डालता है, मेरी वजह से जी फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा, तो बेहतर है फिर मैं अपनी सीट छोड़ दूँ, फिर मैं नहीं ये काम करती, कोई और करे। ऐसा खुफिया वार है मुजाहिदीन के बीच में भी जो अल्लाह के रस्ते की जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, और वो अंसारुल्लाह जो अल्लाह के रस्ते में जाते हैं, शैतान उनको हर तरीके से जब पीछे करने की कोशिश करता है और वो नहीं होते ना, वो कहते हैं जो मर्जी अल्लाह को, हमारी ज़रूरत है कि नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, तो फिर शैतान कभी कभी ये वार डालता है, तुमसे तो गलतियाँ बड़ी होती हैं, तुमने खाम खा एक सीट रोकी हुई है, कोई और आए तुम्हारी जगह आगे, भाई कैसे आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? याद रखिए अपने लिए लिख लें। माशाल्लाह आप सबको मैं इस वक्त तसव्वुर में यही देखती हूँ कि आप कहीं ना कहीं जमे में, और ये जो छोटी क्लास है ये भी कल कहीं ना कहीं आएगी ना, और आप एज अ स्टूडेंट भी मुझसे समझ लीजिए, मुझे नहीं आना कुछ, मुझे नहीं सीखना, मैं कुरान सीख तो रही हूँ लेकिन मैं तर्जमा ही नहीं याद कर रही, और मेरे तो इतने असाइनमेंट छूट गए, और तफसीर तो मैं पूरी लिख नहीं पाती इसलिए छोड़ ही दूँ कोर्स। कितने लोग जो फातिहा पे शुरू करते हैं नाज तक नहीं पहुँच पाते, उसके पीछे ये बातें होती हैं कि मायूस हो जाओ। तो मायूसियों में घिरने से बचाने के लिए अल्लाह ताला सहाबा कराम को अब वो खूबसूरत किरदार साजी की चीज़ें दिखा रहे हैं कि जिसके बाद फिर वो जुमला जो मुझे हमारी अपनी ही एक सिस्टर का बड़ा अच्छा लगता है, वो कहती हैं ये तो पता है कि अच्छा काम मैं नहीं करती, मुझे आता नहीं, मेरी स्किल्स नहीं, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी, ए अल्लाह मुझे ही रखना, मुझे हटाकर किसी और को ना लाना, ये है जुमने का नुक्ता। वरना आप में से मेरे में किस में ये जुर्रत है कहने की कि मैं बड़ा एक्सीलेंट काम करता हूँ? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। हम अल्लाह को अपना काम पेश कर सकते हैं? आप देखिए ना, आपने किसी को कोई चीज़ पेश करनी हो तो आखिरी वक्त तक तड़का नहीं लगा होता, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं पसंद ना आई, फिर क्या होगा? किसी को जिससे आप मोहब्बत करें, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा दिल लगा हो और उसके लिए आपकी इज्जत हो दिल में, आप तो आखिरी वक्त में घबरा रहे होते हैं कि नहीं आपके काबिल तो नहीं है लेकिन मेरे पास यही था। अल्लाह के साथ यही मामला रख के आखिरी दम तक चलते रहे, करना मैंने ज़रूर है, छोड़ना मैंने कोई नहीं, लेकिन मेरी इसलाह कर दें। ये धोखा था शैतान का जो उसने कईयों को दिया और पीछे हटा दिया। तो बड़ी गुंजाइश थी कि जब बहुत से वापस गए लोग तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, कई लोग फिर वो रिज़ाइन कर जाते हैं, नो नो आई एम लीविंग, कुछ बताए बगैर चले जाते हैं, बाद में कहते नहीं मैंने इसको सवाब समझ के छोड़ा, आई थिंक आई वॉज मेकिंग सम मेस, आई थिंक सो यू डोंट लाइक मी। ये सारी चीज़ों को पकड़ के ना चुड़मुड़ करके रद्दी में डाल के कहे मैं खड़ी हूँ, जो मर्जी कर लो मैंने नहीं बदलना, वरना तो हमें से हर एक को अपने बीवी होने से भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। अपने मियाँ को आप कह सकते हैं कि मैं अच्छी बीवी नहीं तो फिर बेहतर है मैं छोड़ दूं, आप कोई और ही ले लें। नहीं कर सकते, इसलिए कि वह खुली कल इंसान हूं दईफा। बंदा अल्लाह के रस्तों में निकले तो अच्छा निकले।